नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा रिटर्निंग अधिकारियों की रिपोर्ट पर लिया गया। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्टों के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत कच्चे तेल के विश्व के 5वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। सूरत में तीसरे वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ऊर्जा संकट के बाद देश ने न केवल अपनी ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाई है, बल्कि सफलतापूर्वक 60% LPG का उत्पादन भी देश के भीतर ही कर रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और माल ढुलाई लागत में वृद्धि के बावजूद सरकार ने खुदरा ऊर्जा कीमतों को स्थिर बनाए रखा है, जो आम नागरिकों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित क्षेत्रों से निरंतर और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि देश में LPG की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जी वत्सल में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल VK सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को सांस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची NLEAP पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकी के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी बैसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए गए हैं। सरकार ने कहा है कि ग्रेट निकोबार परियोजना इस बात का उदाहरण है कि समग्र विकास किस तरह आर्थिक विकास, पारिस्थितिकी संरक्षण और सामाजिक समावेशन को संतुलित कर सकता है। सरकार ने कहा कि ये परियोजना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री और रक्षा उपस्थिति को मजबूत करने के लिए ग्रेट निकोबार की रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाती है, साथ ही मजबूत पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और जनजातीय कल्याण तंत्रों को भी शामिल करती है। ग्रेट निकोबार परियोजना अंडमान सागर में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने की एक रणनीतिक पहल है। झारखंड के 7 वर्षीय बालक ईशांक ने पाक जलडमरू मध्य पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बनने का रिकॉर्ड बनाया। ईशांक ने श्रीलंका और भारत के बीच 29 किलोमीटर की दूरी को अपने आयु वर्ग के रिकॉर्ड समय 9 घंटे और 50 मिनट में पूरा किया। भारत थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। डेनमार्क में खेले गए क्वार्टर फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को 3-0 से हराया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज तेज बारिश हो सकती है। विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पश्चिम बंगाल में बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।